ओम शांति। ऊंट का एक बच्चा अपनी मां से पूछता है कि हम सारे जो ऊंट हैं उनको ये कुबड़ क्यों है हम्प? तो मां कहती है वो इसलिए क्योंकि हम रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी हैं, वहां दूर दूर तक पानी नहीं होता है और इस कुबड़ में हम पानी का संचय, पानी को जमा करके रखते हैं। उसके बाद में वो बच्चा पूछता है अच्छा फिर हमारी टांगे इतनी लंबी लंबी क्यों है, टांगे इतनी लंबी क्यों है और जो पाँव है वो गोल गोल क्यों है? तो माँ कहती है क्योंकि हमें रेगिस्तान में चलना होता है और वहां पे लंबी लंबी टांगों की आवश्यकता है और पाँव हमारे गोल इसलिए ताकि वो जम जाए रेगिस्तान में रेत पर ताकि हम चल सके। वो बच्चा कहता है अच्छा, फिर वो पूछता है हमारी जो पलके है इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? तो माँ कहती है क्योंकि रेगिस्तान में कभी तूफान भी आ जाता है, धूल मिट्टी उड़ती है, इसलिए हमारी जो पलके हैं वो बड़ी बड़ी होती है। तो फिर वो बच्चा कहता है अच्छा, तो कुबड़ इसलिए ताकि हम पानी का संचय कर सके, अच्छा टांगे लंबी इसलिए ताकि हम रेगिस्तान में चल सके और पलके बड़ी इसलिए ताकि रेगिस्तान में उठने वाली जो आंधी है उससे हम बच सके, तो फिर हम इस प्राणी संग्रहालय में क्या कर रहे हैं? वो पूछता है तो फिर हम इस जू में क्या कर रहे हैं? तो बच्चों के पास तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बड़े पवित्र होते हैं, इसके लिए बुद्धि सतो प्रधान होती है, धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है और कई बार बच्चों के जो प्रश्न है उनके उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी भारत की सभ्यता ये रही है कि भारत की माताएं बच्चों को इस तरह से शिक्षाएं देती है ताकि उनमें नैतिकता, धर्म के मूल्य का बीजारोपण हो सके, उनको इस तरह से शिक्षित करती है, प्रशिक्षित करती है ताकि वो जीवन के अर्थ मूल्य को जान सके। जैसे दक्षिण में जो मदाल सदका दिखाया हुआ है वो अपने छोटे बच्चे को क्या कहती है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। वो छोटे से पालने में बच्चे को लोरी सुना रही है और क्या कह रही है? तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम बुद्ध हो, तुम आत्मा हो, ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दे रही है। बचपन से ही ये बता रही है नचवाती भूत संगम, तुम शरीर नहीं हो, शुद्धोसी बुद्धोसी, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, ऐसी शिक्षा है वो देती है अपने बच्चे को। और दिखाया है उसके सारे ही बेटे तपस्वी बन जाते हैं। तो बच्चे बहुत तीक्ष्ण होते हैं और हमारा मन भी एक बच्चा है, उसको भी वैसे ही सिखाना होता है जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाए, क्योंकि मन का स्वभाव उपद्रव का है, भागने का है, घोड़े जैसा है, वो भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है। जैसे एक व्यक्ति घोड़सवार तेजी से घोड़ा चला रहा है, भाग रहा है, सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा है उसको पूछता है तुम कहां जा रहे हो? वो कहता है मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, मुझे कौन लेके जा रहा है? घोड़ा ले जा रहा है। ये घोड़ा अवचेतन मन है जो भगा रहा है, जो भागता है, कहां ले जाता है समझ नहीं आता है। इसलिए भारत की माताएं लोरिये सुनाती है अपने बच्चों को और उनको नैतिक शिक्षाएं देती है। जब भी बेटा नहीं सोता है बच्चा, तो क्या करती है, उनको लोरी सुनाती है, कहानियां सुनाती है। तो ऐसी एक कहानी आज हम सुनेंगे। सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। कौन सी कहानी? बहुत दिनों की बात है, एक था राजा, एक थी रानी। राजा रानियों की कहानी बहुत सुनाई जाती है। क्यों? क्यों सुनाई जाती? राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा, एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करे शिकार, निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था? क्या कहता जा रहा था? क्या मां? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तो तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां मां अपने बच्चों को सिखाती है और उन कहानियों के माध्यम से बहुत सी शिक्षाएं देती है। तो ये भी एक कहानी है जिसकी हम ज्ञान युक्त चर्चा करेंगे। चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़, राजा मन ही मन घबराया कैसे होगा पार। इतने में एक पंछी बोला अपने पंख पसार, पंख बने हैं ये हिम्मत के, ले और हो जा पार। पंख लगाकर घोड़े को राजा ने एड़ लगाई, देने लगी हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई। कौन सी आवाज? क्या मां? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम ना लेना, चलना तेरा काम। तो ये कहानी है, कहानी का पहला भाग। तीन भाग है इसके। क्या आ गया बीच में? पहाड़। राजा निकल पड़ा है अपने नीले घोड़े पर सवार होकर और बीच में पहाड़ आ गया है। पहाड़ आने के बाद क्या हुआ? घोड़ा आने के बाद क्या? पहाड़ आने के बाद क्या हुआ? राजा मन ही मन घबराया कैसे होगा पार, ये कैसे होगा पार। चिंता हो गई राजा को, कैसे पार करूं इस पहाड़ को। इतने में एक पंछी बोला अपने पंख उतार, पंख बने हैं ये हिम्मत के, ले और हो जा पार। पंख लगाकर घोड़े को राजा ने एड़ लगाई, देने लगी हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई। कौन सी आवाज सुनाई देने लगी? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, इस पहाड़ को कैसे पार किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ब्राह्मण जीवन का।
सुन मेरे नन्हू, सुन मेरे मुन्नू, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा, एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा, एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार, निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
क्या माँ?
चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़। चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़। राजा मन ही मन घबराया, कैसे होगा पार। इतने में एक पंछी बोला अपने पंख उतार। पंख बने हैं ये हिम्मत के, ले और हो जा पार। पंख लगाकर घोड़े को राजा ने एड़ लगाई। देने लगी हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े।
तेज चलते रहे और कहीं ना रुके। उसके लिए क्या किया जाए जब पहाड़ बीच में आ जाए। तो इस कहानी में तो एक पंछी आया, उसने अपने पंख दे दिए हिम्मत के, और पंख लगाकर राजा पार हो गया। ब्राह्मण जीवन में भी ढेर सारे विघ्न आएंगे। आज के वरदान में बाबा ने बोला है, पेपर आएगा, क्या करना है, फुल स्टॉप, प्रश्न नहीं, कोटेशन, क्वेश्चन, और करेक्शन नहीं करना है। स्व उन्नति चाहते हो तो क्या कर दो, कनेक्शन अपना बाप के साथ, जो ढीला है उसको टाइट कर दो, ठीक कर दो। जो पहाड़ आ रहा है बीच में, वो व्यक्ति हो सकता है, पर्सन, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, व्यक्ति और परिस्थिति। पहाड़ बनकर आ गए, सामने खड़े हैं। पुरुषार्थ जो चल रहा था तीव्र गति से एकदम से रुक गया है। अब क्या किया जाए जब पहाड़ आ जाता है। तो सबसे सात विधियां हम देखेंगे इस पहाड़ को पार करने की। सबसे पहली विधि है पंख लगा के उड़ जाओ। यह तो सबसे पावरफुल विधि है। पंख अर्थात संपूर्ण साक्षी हो जाना, हिम्मत के पंख। इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, ना तो पहाड़ को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सुरंग बना रहे, ना तो रस्सी डाल रहे, कुछ नहीं, ना तो छन्नी और हथौड़े से पहाड़ को तोड़ रहे हैं। पहाड़ के साथ कुछ नहीं करना है। जैसे ही विघ्न आ जाए, जैसी ही परिस्थिति आ जाए, आज बाबा ने पुरुषार्थ में भी कहा है, योग का प्रयोग करो, अर्थात संपूर्ण साक्षी स्थिति में, डिटैच्ड ऑब्जर्वर स्थिति में स्थित हो जाना। जब भी कोई जीवन में अचानक से परिस्थिति आ जाए, हम क्या करते हैं, उस समय उस परिस्थिति का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, इन्होंने ऐसा क्यों किया, और क्यों किया, जानबूझकर किया, जरूर कोई मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, मैं भी देखता हूं उसको, उधर से उसके संकल्प, इधर से हमारे संकल्प, मन ही मन द्वंद्व हो रहा है, एक नकारात्मक ऊर्जा तैयार हो रही है। यहां बाबा ने कहा है, परिस्थिति आ जाए, साक्षी स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ, तो वो परिस्थिति, वो माया तुम्हारी सीट के नीचे दबकर भस्म हो जाएगी। बाबा के महावाक्य है ये, साक्षी स्थिति के लिए। पर वो साक्षी स्थिति का अभ्यास केवल परिस्थिति के समय नहीं होगा, पहले से अभ्यास चाहिए। इस खेल को साक्षी होकर देखना है, इस खेल को साक्षी होकर देखना है, क्या इसमें हो रहा है, क्या इसमें चल रहा है। कल कहा ना बाबा ने, वो गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हुई है, ताकि मनुष्य सुधरे, परंतु मनुष्य सुधरे ये ड्रामा में है ही नहीं। भगवान कितना साक्षी है, वो साक्षी का सागर है, उसकी वो जो महिमा योग में गाते हो, उस महिमा को थोड़ा बाजू रख के नए प्रकार की महिमा गानी है। कौन सी? बाबा साक्षी का सागर है, अर्थात संपूर्ण डिटैच, अर्थात वो दो डिपार्टमेंट में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता है। कौन से वो दो डिपार्टमेंट है? एक तो प्रकृति के डिपार्टमेंट में जरा भी दखलंदाजी नहीं करता, और दूसरा डिपार्टमेंट कर्म, कर्मों का हिसाब, कर्म फिलॉसफी में वो जरा भी इंटरफियर नहीं करता है। जिसकी जो बीमारी है, जिसको जो वो है, वो होते रहेगा। हाँ, आज की मुरली में कहा है, मैं ऑन गॉड फादरली सर्विस, तुम्हें भी रहना है जैसे मैं रहता हूं, जैसे ये बीमार पड़ता हूं तो मैं उससे लिखवाता हूं, मैं निरंतर सर्विस में हूं, परंतु सर्विस करते हुए भी वो डिटैच है, सबसे प्यार करते हुए वो डिटैच है, वो साक्षी का सागर है, एक वो उपरामता का सागर है, दो वो नष्ट मोहा का सागर है, वो धैर्य का सागर है। ये गुण उससे लेना है। मैं आत्मा परमधाम में गई, धैर्य का सागर ऊपर, उससे धैर्य की किरणें ले रही हूं। वो साक्षी का सागर, उससे साक्षी भाव की किरणें ले रही हूं। वो निर्मोही है, वो कैसा है, बिल्कुल नष्ट मोहा। उससे साक्षी नष्ट मोहा ये किरणें मैं ले रही हूं। नए योग की अभ्यास करने, वो बहुत कर लिए, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, ज्ञान का सागर, वो और किस 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 का सागर है, उसकी लिस्ट बनानी है और वो अभ्यास करने हैं। तो सबसे पहला, जब भी परिस्थिति आ जाए पहाड़ के रूप में, राजा मन ही मन घबराया। अब घबराना नहीं है यहां पर, कैसे होगा पार, पंख लगे हैं ये हिम्मत के, ले और हो जा पार, साक्षी हो जाओ। ये पहला। दूसरी विधि, जब भी अगर खुद पंख नहीं है तो कोई फ्लाइट में सवार हो जाओ, वो फ्लाइट ले जाएगा और वो प्लेन है परमात्मा प्रेम, प्रभु प्रेम स्नेह का। आज बाबा ने कहा है, स्नेह से प्यार से बाप को याद करो। उस प्यार की, उस परिस्थिति सामने है, अचानक कोई विरोधी हो गया, अचानक कोई विरोध हो रहा है, क्या करना है उस समय, प्रभु प्रेम में डूब जाओ। वो परिस्थिति के बारे में सोचना नहीं है, ये तो अभी तक मित्र था, अभी शत्रु कैसे बन गया, जरूर किसी ने भड़काया है हमारे खिलाफ, कौन है पहले तो वो पता करो, किसने ये फैलाई, मेरी बात किसने वहां तक पहुंचाई। इसका इन्वेस्टिगेशन करने से ज्यादा अच्छा है प्रभु प्रेम में डूब जाओ, इसकी तहकीकात करने से, इस प्रभु प्रेम में खो जाओ। तो वो फ्लाइट है, उसमें बैठ के अपने आप उधर पहुंच जाओगे। ये दूसरी विधि। तीसरी, अब इधर से नहीं जा सकते, अब इधर से चले जाओ बाईपास। तीसरी विधि बाईपास, बाजू से चले जाओ। और बाजू से चले जाना अर्थात ड्रामा, ये जो हो रहा है ना, इसको होने दो बस, इसको यस बाईपास माना ड्रामा। वो परिस्थिति का कुछ करना ही नहीं है, बस यहां से अपना मार्ग निकाल रहो, ये बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, बहुत ही अच्छा किया तुमने जो किया ना, बहुत बढ़िया, चलने दो। लेट क्यों कर दिया, जल्दी किया होता तो अब तक अनुभव ही बन गए होते, अब तक विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट मिल गया होता, ब्राह्मण जीवन में जैसे ही प्रवेश किया पदार्पण, उसी समय कर लेना चाहिए था, तभी कर दिया होता तो आज कितने बैचेस लगे होते अच्छे अच्छे, मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक, इधर भी दो तीन, इधर भी दो तीन, लश्कर कल की मुरली में था ना, उनका तो बाहर होता है। तुम्हारी लड़ाई तो बहुत लंबी चलने वाली है, तुम्हारा बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर करना है तुमको, पास कर जाओ उसको, उसके बारे में कुछ नहीं करना है। पर हम क्या करते हैं, उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, और वो सोचते सोचते अमृत वेला भी जाता है, मुरली भी चली गई, क्योंकि टाइम इसको देते हैं। उसके बाद में चौथा, अब पहाड़ को पार करना ही है तो खुशी खुशी से पार करना, फिर अब ये नहीं हो रहा है तो वो चढ़ते हैं ना, जब पिकनिक के लिए जाते हैं, एडवेंचर, नहीं एडवेंचर नहीं, पहले पिकनिक, पिकनिक वाला जो एडवेंचर बात का है, पहले पिकनिक, पिकनिक में 10 लोग जा रहे हैं, घूमते घूमते नाचते गाते, पहाड़ दिखा, पहाड़ पे भी यहां आ रहे यहां रुक रहे हैं, फिर एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ की जर्नी को। हाँ जाएगा, इसलिए तो तीन इधर रखा उसको, पहले ये करो, ये नहीं हो रहा है तो क्या करे, अब प्रभु प्रेम तो प्रकट ही नहीं हो रहा है, हम से अनुभव ही बनेंगे, अभी वो नहीं हो रहा है, साक्षी तो सबसे ऊपर वाली स्टेज है, एकदम पूरा ही ऊपर चले गए, पर यहां पर उसको एंजॉय करना है, जर्नी भी, ये विघ्नों की भी जर्नी एंजॉय किया। अच्छा उसने ऐसा कहा मेरे बारे में, वाह 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 क्या बात है, पहले क्यों नहीं कहा। अच्छा कोई आके कहे कि उसने कहा कि तुम्हारे बारे में ऐसा करते कि तुम कुछ काम में तुम्हारा ध्यान नहीं है आजकल। अच्छा ऐसा कहा, बहुत ही बढ़िया कहा। कोई कान में आके कहता है हमने सुना है लोग आजकल कह रहे तुम्हें अहंकार बढ़ते जा रहा है, क्या करे बोलो, व्हाट इज, क्या रिएक्शन दोगे। आज की मुरली में ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, बाप भी वंडरफुल है, उसकी बातें भी वंडरफुल है। कोई हित चिंतक आके ऐसे कहते हैं ना, हमने सुना है पर हमको लगा कि हम तो तुमको बता दे एक बार तो अच्छा होगा। सबसे ज्यादा जैसे वो दिखा रहे कि मैं हित चिंतक हूं, लोग ऐसा कह रहे हैं, उसको पूछो कौन कह रहा है, वो नहीं पूछो, लोग कह रहे हैं ना, कौन कहता है वो बताओ, एक व्यक्ति का नाम बताओ, किस किस का नाम बताए, सभी कहते हैं। और होगा ऐसा कि कोई कह नहीं रहा है, इसी के विचार है जो दूसरों के ऊपर थोप रहा है कि ये सब कह रहे हैं मिलके, बाकी इनका कुछ कहना है नहीं, इसको ऐसा लगता है पर डायरेक्ट तो कह नहीं सकता, अब अपना मित्र भी तो है। तो हमने ऐसा सुना है आजकल, आजकल थोड़ी चर्चा चल रही है तुम्हारे बारे में, तुम थोड़े क्या है आजकल, बहुत ही तुम्हारा तो चल रहा है। तो क्या करना है, एंजॉय करना है, इसको भी एंजॉय करना है। प्रशंसा तो सभी एंजॉय करते हैं, निंदा को भी तो एंजॉय करने होता है। प्रशंसा से फायदा क्या है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा योगी बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है ठीक है, आगे इससे कोई चिंतन चला। कोई आके कहता है कि हमने सुना है तुम्हारा किसी एक आत्मा में गहरा लगाव है। कोई आके कान में गया हमने ऐसा सुना है, मतलब पता नहीं लोग कहते हैं कौन है वो। ऐसा कहा किसी ने, तुम्हारा बहुत लगाव है किसी में, कुछ है क्या, चक्कर चल रहा है। ऐसा कहेंगे तो क्या होगा सामने वाले का, योग क्लास। पहले बताओ किसने बोला, तुमको किसने बताया। तो ये क्या है, छन्नी लेके पत्थर तोड़ना, बताओ नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तब तक, ये सब में जाना नहीं है। क्या करना है, यहां पर एंजॉय करना है ये यात्रा भी, उसके बाद में पांचवा एडवेंचर, चैलेंज ले लेना है इसको कि हमको इस चोटी तक पहुंचना है, ये पहाड़ बहुत बड़ा है पर पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। वो जो होते हैं ना माउंटेनियरिंग, वो चैलेंज ले लेते हैं, टेक चैलेंज है बस उनके लिए, कुछ भी करना है मुझे पहुंचना ही है बस वहां तक, चाहे कितनी भी मुश्किल आए कितनी भी बाधाएं आ जाए इसमें, पर मैं पहुंच के रहूंगा। बस उनको वो लक्ष्य ही दिखाई देता है, यहां पर जो होते हैं ना भारत का झंडा लहरा गाड़ना इधर बस, और कुछ नहीं। तो ये एक विधि है पांचवी। उसके बाद में नेक्स्ट है रोप क्लाइंबिंग, वो यहां करते हैं ना रस्सी ऊपर फेंकते हैं और चढ़ते हैं, उसमें सब कुछ है, उसमें एडवेंचर भी है, उसमें एंजॉयमेंट भी है, उसमें ट्रेनिंग भी है, वो सीखने के लिए करते, सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण है, वो एक्सरसाइज है उनकी। तो श्रीमत जो है ना वो रस्सी है, उसको फेंक दो वहां पर पहाड़ के ऊपर, और फिर ये मत सोचो अब क्या होगा, बस उसको पकड़ के आंखें बंद करके भी चलते रहो तो भी चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रीमत वो रस्सी है। विघ्न आया है सामने, अचानक कोई विरोध, अचानक कोई निंदा, अचानक कोई ग्लानि, अचानक कोई षड्यंत्र कर रहा है, अचानक कोई टांग खींच रहा है, अचानक कोई बॉक्सर बन गया है, अलग अलग दाव, वो तंगड़ी मार दाव, नेत्र नोच दाव, अलग अलग दाव होते हैं उसपे। सामने वाले का ऐसे पैर करके ऐसे घुमाने का, वो नीचे गिरता है, तंगड़ी मार, तंगड़ी तोड़ दाव, अलग अलग दाव होते हैं उसमें। तो रस्सी फेंक देना है, बस ये श्रीमत है। श्रीमत कहती है तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है और तुमने उसकी निंदा की तो तुम्हारी फिर दुगुनी निंदा होगी। बाबा के महावाक्य, इसके लिए इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है होने दो, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। जो प्रशंसक है उनकी तो कभी निंदा करते नहीं, हम निंदा उनकी करते जो हमारी निंदा करते, और वही तो समय होता है परीक्षा का, पेपर का। इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करना। श्रीमत वो रस्सी है, उसके बाद में सातवा, ये रास्ता ही बदल दो पूरा, इधर जाओ ही नहीं, अब पहाड़ दिख रहा है ना, पूरा मार्ग ही बदल दो इधर जाना ही नहीं है, दूर से देख लिया वो पहाड़ खड़ा है उधर, अब जब पहाड़ पीछे लगा है फिर भी हमें उस पहाड़ की तरफ देखना ही नहीं, मुंह कर लो उधर और पीछे पीछे भाग रहा है पर रास्ता ही बदल दो, पूरा के पूरा रास्ता बदल दो, पूरा कंप्लीट मार्ग ही बदल दो कि मुझे ये जो विघ्न है इससे टकराना है ही नहीं, और ना ही पार करना मुश्किल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस चेंज कर दो। तो जीवन में विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएगी, समस्याएं आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। अभी अभी मुरली चली थी, बाबा ने होमवर्क दिया था, बाप की आश है समस्या का निवारण करो और कारण को, कारण का निवारण और समस्या का समाधान, ये बाप देखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जिसके जीवन में कोई विघ्न नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हर एक के जीवन में है। और जिसको अपनी जीवन की परिस्थिति विघ्न सुनाओ वो डबल सुनाता है उसकी अपना दुख किसी को सुनाओ तो अपना डबल दुख सुना देते, सोचते हमने क्यों सुना दिया इसको, छोड़ो ये तो हमसे ज्यादा दुखी है। तो जब भी परिस्थिति आए, पहाड़ आ जाए, तो एक तो सबसे पहले साक्षी हो जाओ, दूसरा बताया प्रभु प्रेम में डूब जाओ, तीसरा बताया ड्रामा का चिंतन करते रहो, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का एक एक सीन कल्याण छिपा हुआ है, उसके बाद में एंजॉय करो उस जर्नी को। इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इससे, नहीं तो हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे? ऐसे ही शक्तिशाली बनता है क्या कोई? एक सम्राट अगर बनना है वो चंद्रगुप्त को बचपन से लेके विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न, तब कहीं जाके सम्राट बन सका, सारे विघ्नों को सहा, तब कहीं सम्राट बनता है। ऐसे ही कोई सम्राट नहीं बनता है, और सारे विश्व का मालिक बनना है। आज की मुरली में है बाप तिरी पर, हथेली पर बहिष्ट लेकर आए, ऐसे थोड़ी दे देंगे ये लो। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि वो जो मटका खरीदते हो उसको भी क्या करते हो, कितने का होता है मटका उस समय, पाई पैसे का वो मटका, उसको भी ठोक बजा कर देखते हो, मैं तुमको विश्व की बादशाह ऐसे दे दूंगा? आज की मुरली में तीन प्रकार के बच्चे, श्रेष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, ऐसे थोड़ी ना देंगे। देखेगा चुस्त है सुस्त है, कैसे बादल है, कैसे विद्यार्थी है, फिर देगा नंबर वार वर्षा, तो विघ्न आएगा। तो क्या करना है, एंजॉय करना है, फिर उसको चैलेंज के रूप में ले लेना है कि मुझे चाहे कितनी भी बाधाएं परिस्थिति आ जाए पर मैं तो जीतूंगा ही, यह हमारी भी हट है, कुछ भी हो जाए झंडा गाड़ के रखेंगे। फिर उसके बाद में बताया क्या करना है आगे, ये रस्सी फेंकना है बस, श्रीमत उस समय श्रीमत क्या है ढूंढना है मुरलियों में, ये परिस्थिति आने के बाद क्या करना है, अव्यक्त मुरलियों में, वाणियों में, स्पार्क में किताब है श्रीमत, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी श्रीमत, वो श्रीमत की बुक्स हमेशा साथ में रहना और श्रीमत को निरंतर स्टडी करते रहना, क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। और लास्ट बताया, हो सके तो मार्ग ही बदल दो। लेकर राजा को एक वन में आया नीला घोड़ा, लेकर राजा को वन में आया नीला घोड़ा, देख के एक चंचल हिरनी को उसके पीछे दौड़ा, लेकिन पास जो उसके पहुंचा तो देखो किस्मत की करनी, रूप में उस चंचल हिरनी के निकली जादूगरनी। चंचल हिरनी नहीं थी वो, कौन थी, जादूगरनी थी। पलट के जादूगरनी ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा पत्थर बनकर घोड़ा। फिर क्या हुआ मां, फिर क्या हुआ, फिर राजा कैसा कहता, क्या मां, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तो नाम ना लेना, चलना तेरा काम, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
दूका तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
फिर राजा कैसे कहता,
क्या माँ?
चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
हिरनी को कैसे पहचाने, क्योंकि उसमें जादूगरनी छिपी हुई है। क्या किया जाए जो माया को पहचान सके? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हर ब्राह्मण आत्मा के जीवन का, कि ये पहचान ले कि यही माया है। सीता खड़ी है, रावण सामने है ब्राह्मण वेश में, सीता कैसे पहचाने कि ये माया है, ये रावण है? क्या विधि है वो पूछ लो, वो तो कभी नहीं बताएगा। वो बताएगा कभी मैं रावण हूं, तुमको ले जाने आया हूं, पुष्पक विमान बाजू में ही पार्क किया हुआ है? नहीं, प्रश्न है माया को कैसे पहचाने। वो तो माया के रूप हमें बहुत सारे पता है, फैशन, ये वो, नेगेटिव थॉट्स, ये माया है। याद नहीं रहेगी। और जैसे सीता का दिखाया हुआ है, रावण को पहचानने के लिए रावण के साथ कुछ नहीं करना है, हमें अपने अंदर देखना है क्या क्या हो रहा है, उससे पहचाना जा सकता है कि ये रावण है। सबसे पहला जो दिखाया, आकर्षण। अगर मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ है तो समझ लेना ये माया है। पर खुशी तो हो रही है, आकर्षण की खुशी है। पर ज्ञान हमको ये कह रहा है, विवेक कहता है कि ये आकर्षण उत्पन्न होना, तो जहां आकर्षण उत्पन्न हो रहा है अर्थात सामने जो कुछ व्यक्ति है, जो भी परिस्थिति है, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति माया है, क्योंकि उसकी वजह से मन में मंडोल रहा है, आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद में दूसरा है इच्छा। इच्छा उत्पन्न हो गई है वो पाने की, कि मुझे वो मिल जाए। पहले नहीं थी ये इच्छा, अब तक नहीं थी, अब तक का योगी तपस्वी वैरागी जीवन था, अचानक से इच्छा उत्पन्न हो गई है कि मुझे भी ये होना चाहिए, उसको वो मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। अर्थात ये माया का सूक्ष्म रूप है। अर्थात माया क्या करने वाली है, पलट के जादूगरनी ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा। तीर छोड़ रही है माया। तीसरा, जिद और सिद्ध। पहले इच्छा थी केवल, पहले आकर्षण हुआ, इच्छा हुई, और अब जिद हो गई है कि मुझे पाना ही है, वो उसको मिला, मुझे भी मिलना चाहिए। उसके बाद एक शॉल मेरे, उसके पास दो, मेरे पास एक, आखिर कब तक यह अन्याय हम सहन करते रहे। हम इतनी सेवा करते, वो कुछ नहीं करता, उसकी तारीफ और हमारा कुछ नहीं। यहां पर भी ऐसा, जादू का तीर है, पत्थर बनकर घोड़ा, मन पत्थर बन जाएगा, पत्थर बुद्धि, और राजा अर्थात तोता बन जाएगा, रिपीट करते रहेगा बस ज्ञान की बातें, अनुभव कुछ नहीं। चौथा, संशय। जब मन में संशय उत्पन्न हो रहा है, बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, यहां के लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, बहुत सारी बातें, मधुबन के प्रति नेगेटिव देख देख कर, अर्थात ज्ञान के प्रति, अर्थात ये माया का वार है, यही माया है। ये निश्चय बुद्धि नहीं हुआ, फिर हलचल हो रही है अंदर, आत्मा चंचल बन रही है। चंडीगढ़ में अचल बहन जी थे, पहले उनका नाम चंचल था। उन्होंने बाबा को खत लिखा था, तो बाबा ने कहा आज से तुम्हारा नाम चंचल नहीं, अचल होगा। तो बाबा ने नाम ही बदल दिया, चंचल का नाम। तो संशय, संशय अगर आ रहा है, डाउट्स क्रिएट हो रहे, सस्पिशन हो रहा है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है यहां, अर्थात यही माया का वार है, यह समझ लेना है, बहुत सूक्ष्म है। उसके बाद में पांचवा, अपराध भाव जन्म ले रहा है मन में, बार बार लग रहा है ये नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहा हूं, ये नहीं करना चाहिए नहीं फिर भी हो रहा है मेरे से, ये मेरा स्वभाव नहीं है फिर भी स्वभाव के विरुद्ध मैं कर रहा हूं, अंदर अपराध भाव है। रोज अमृत वेला मिस, रोज अमृत वेला साधारण, रोज मुरलियां चल रही है उसका कोई चिंतन खास चल नहीं रहा है, रोज नुमा शाम का योग मिस, रोज रिश्तों में कड़वाहट, अपराध भाव आ रहा है, अर्थात ये माया का अटैक है या अंदर से हलचल है मोह के कारण। जिसमें मोह है वो अगर कुछ गलत करता है तो इधर हलचल, जो जिसमें मोह है उसको अगर कोई कुछ बोलता है इधर हलचल, उसके साथ कुछ अहित होता है वो बीमार पड़ता है इधर हलचल। यहां तो नष्ट मोह बनना है, कितना बड़ा पाठ है। उसके बाद में अगला माया का सूक्ष्म वार, एक तो बताया अपराध भाव, उसके बाद में अगला खुशी कम, अपने आप खुशी कम हो गई, सजा मिलेगी। अभी अभी मुरली सजा पर चली थी ना, क्या कहा था सजा के लिए कल परसों? कब कब सजा खानी पड़ेगी? तो सजाएं खानी पड़ेगी, तो खुशी कम हो गई। सजा वो कोई धर्मराज नहीं बैठा है दंडा लेकर आ जाओ एक एक को मारता हूं, यही सजा है। खुशी गुम हो जाना ही सजा है। अमृत वेला उठ रहे पर कोई उत्साह ही नहीं है, यही सजा मिल गई है, जरूर कोई श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। तो खुशी गुम। अगला असंतोष, अतृप्त है आत्मा, कोई चीज उसको तृप्ति नहीं, स्थूल अतृप्ति है, इतना यहां आ गया ये किया वो किया पर अतृप्त नहीं है आत्मा। अभी भी नए नए आकर्षण आ रहे हैं, नए नए चीजों की तरफ बुद्धि आंखें डूबती है, किसी में कुछ देखा तो वहां वो चाहिए मुझे भी, उसको इतना मिल रहा है मुझे इतना मिल रहा है, हम ये क्यों भूल रहे हर आत्मा को वही मिल रहा है जो उसके भाग्य में है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले। बोलो किसने क्या पाया है? किसी ने कुछ नहीं पाया, ये सब माया के रूप है। तो माया को कैसे पहचानना है? देखकर एक चंचल हिरनी को, उसके पीछे दौड़ा, उसके पीछे भागना नहीं है लेकिन उसके पास जो पहुंचा तो देखो किस्मत की करनी, रूप के उस चंचल हिरनी के निकली जादूगरनी, पलट के जादूगरनी ने जादू का तुईर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा। माया को कैसे जीते, माया को कैसे पहचाने वो देखा। अब दूसरा है माया सामने है तो क्या किया जाए उसको देखेंगे, पहले ये इसको पूरा कर लेते हैं। इधर महल में राह देखते व्याकुल हो गई रानी, राजकुमार के कोमल मुख पर भी छाई वीरानी। तब ईश्वर से दोनों ने रो रो कर करी पुकार, दे दे हमें हमारा राजा, जग के पालनहार रे ओ जग के पालनहार। सुनकर उनकी बिनती दूर गगन में ज्वाला भड़की, जादूगरनी के सिर पर एक जोर की बिजली कड़की। तोते से फिर निकला राजा और पत्थर से घोड़ा, राजमहल की वो और वो पूरे जोर लगा कर दौड़ा और बोला क्या मां, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
इधर महल में राह देखते व्याकुल हो गई रानी, राजकुमार के कोमल मुख पर भी छाई वीरानी। तब ईश्वर से दोनों ने रो रो कर करी पुकार, दे दे हमें हमारा राजा, जग के पालनहार रे ओ जग के पालनहार, जग के पालनहार रे ओ जग के पालनहार। सुनकर उनकी बिनती दूर गगन में ज्वाला भड़की, जादूगरनी के सर पर एक जोर की बिजली कड़की।
क्या माँ?
चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
सबसे पहली चीज, जब भी माया आ जाए, पहली चीज चक्र। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र घुमाना है और उससे माया का गला काटना है। विकार की इच्छा हो रही है, व्यर्थ चल रहा है, निगेटिव आ रहा है, उस व्यर्थ के साथ, उस निगेटिव के साथ, उस विकार के साथ कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है कहां करना है? चक्र, चक्र घुमाना चालू कर देना है। अपना सुदर्शन चक्र, 500 रूपों का अभ्यास, मैं वहां थी, मैं वहां थी, मैं वहां थी, मैं वहां थी, अब यहां हूं। बस इस चक्र को ही अंदर ही अंदर घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, अपने आप वो परिस्थिति का गला कट जाएगा। परिस्थिति के साथ कुछ नहीं करना है। दूसरा, छत्र छाया, मैं परमात्मा छत्र छाया में हूं, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको जो करना है कर ले, सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में हो जाए, अक्षयोणी सेना तुम्हारे विरोध में हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हारा साथी है। वो प्रहलाद को क्या कुछ सहन करना पड़ा, कहां कहां से उसको परीक्षाएं देनी पड़ी, उसको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। वो खुद अपनी मां को समझाता था, कुछ नहीं होगा मुझे, चिंता मत करो तुम। कितना उसको निश्चय है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तीसरा मंत्र, कौन सा मंत्र? मन मनाभाव, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते रहो, अजपा जाप। बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो, पांच अक्षरी मंत्र, लास्ट मुरली में बताया ना बाबा ने, मंत्र, यही मंत्र है। उस व्यक्ति के साथ कुछ करना नहीं है, जादूगरनी के साथ तो कुछ करना नहीं, ऊपर से जोर से बिजली कड़की सिर पर, और उसके सिर पर बिजली कड़की, वो अपने आप मर जाएगी। पत्थर से फिर निकला घोड़ा, तोते से फिर राजा, राजमहल की ओर वो जोर से दौड़ा, वापस अपने घर दौड़ेगा फिर वो। उसके बाद में चक्र घुमाया, छत्र में चले गए, मंत्र का जाप किया, उसके बाद में आग जलानी है, लगन की आग। बाबा ने कहा है जब आग जला के रखो तो जानवर नहीं आएंगे, लगन की आग हो। उसके बाद में वास धूप, कौन सी वास धूप? पवित्रता की वास धूप हो। कई सारी मुरलियां चली है, साकार मुरली, पवित्रता की वास धूप लगा के रखो तो विकार भाग जाएंगे। उसके बाद में किला, कौन सा किला? संगठन के किले के अंदर रहो, इस किले के अंदर रहेंगे तो विकर्म नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे। और व्यक्ति क्या करता है, जब जीवन में माया आती है, संगठन से ही दूर जाता है, सोचता है एकांत में बैठ के चिंतन करता हूं, तब तो और संगठन में आना चाहिए, तब तो और क्लास में आना चाहिए, तब तो और क्लास में आना चाहिए, तब तो और तीव्र पुरुषार्थियों के मध्य आना चाहिए, ताकि उनके वाइब्रेशंस, वहां बैठते से ही माया भाग जाएगी, कुछ करेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है कि हमें जो प्रश्न का उत्तर चाहिए वो छोटे से बच्चे के मुख से निकल जाएगा। संगठन, उसके बाद में दो पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग वाले दो पहरेदार चाहिए, अटेंशन और चेकिंग के दो पहरेदार। बार बार स्वयं की चेकिंग करनी है माया आने के बाद, मेरी कहीं गलती तो नहीं है? आज की मुरली में बहुत सारे प्रश्न दिए बाबा ने, अपने आप को देखो, तो चेकिंग करनी है खुद की। उसके बाद में सीट, कौन सी? सोमान की सीट, सोमान की सीट पर बैठ जाओ। जब भी परिस्थिति आती है, मैं महान आत्मा हूं, मैं वो आत्मा हूं जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, मैं वो आत्मा हूं जिसके पास हर समस्या का समाधान है, मैं वो आत्मा हूं जो हर कारण का निवारण करती है। कितना अच्छा पावरफुल सोमान है ये, मैं उत्तरों का सागर हूं, प्रश्नों का नहीं, दुनिया प्रश्नों का सागर है। आज की मुरली में है त्राही त्राही मची है दुनिया में, कहां से सुख आएगा इस दुनिया में, और माया भी पावरफुल और तमोप्रधान बनती जा रही है। यहां तो दुख ही दुख है, जिसके पास जाओ अपना दुख का दुकान खोल के बैठा है हर व्यक्ति। तो सुमान की सीट, उसके बाद में पंख, कौन से पंख? ज्ञान योग के पंख। परसों की मुरली थी, आत्मा के पंख टूट गए हैं, ज्ञान योग के पंख लगाने बाप आए हैं, परकटी आत्मा है, पंख देने हैं उसको उमंग उत्साह के, ज्ञान और योग के, जब माया सामने आ जाए। उसके बाद में अगला ज्ञान की तलवार, क्या चाहिए? परिस्थितियों को काटने के लिए ज्ञान की तलवार को धार तेज करके रखनी है बुद्धि की, ताकि चिंतन परिस्थिति में भी चल सके। नहीं तो परिस्थिति आती है, चिंतन खत्म, खलास, केवल परिस्थिति का चिंतन चलता है। तब चिंतन चलता है क्या? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं परम धाम में, वो सब नहीं चलता है। परिस्थिति का सोचता है और ये सोचता है किसने ये किया, उसका मुझे नाम पता कर चल जाए बस, फिर देखना क्या करता हूं मैं, सब ठीक कर दूंगा, एक एक को देख लूंगा। किस किस को देखोगे? पहले अपने को देखो और बाप को देखो। तलवार, उसके बाद में ढाल, कौन सी ढाल? ड्रामा की ढाल, परिस्थितियों में ड्रामा की ढाल चाहिए बस, और ढाल से अपनी रक्षा करो। वार जो होगा ना वो नहीं होगा जब हमारे पास ढाल होगी तो, नहीं तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ वार होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। उसके बाद में डबल लॉक चाहिए, कौन सा? याद और सेवा, सेवा में बिजी हो जाओ, सेवा में लग जाओ। आज की मुरली में कहा ना, जैसे बाप सेवा में है तुम भी ऑन गॉड फादरली सर्विस, सेवा नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आ जाए। लोग क्या करते? सेवा छोड़ देते और सोचते अब खाली योग करते, योग से परिस्थिति को नहीं, सेवा तो चालू रखनी है। अगर मन में हलचल भी हो रही परिस्थिति, तभी बाहर वालों को यह पता ना चल जाए कि अंदर कुछ हो रहा है, ऊपर से सेवा सामान्य रूप से चालू रखे। सेवाओं को छोड़ना नहीं, डबल लॉक, याद और सेवा का लॉक। और लास्ट खुशबू, दिव्य गुणों की खुशबू, नहीं तो 14 साल वन में रहना पड़ेगा सीता के साथ, सीता की तरह। क्या क्या बताया? इसको तो याद रखना है और 24 घंटे में एक बार ये सारी 14 पॉइंट रिपीट करनी है मन ही मन में। कवच हो गया क्या? योग का कवच, तो कवच तो पहना ही नहीं तो माया तो अटैक करेगी ना। ढाल अलग, कवच अलग, तो कवच डाल दो। तो ये सारी चीजें 24 घंटे में एक बार याद करनी है कि क्या मेरे पास ये सब है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? फिर माया अटैक जरूर करेगी। अभी लास्ट पार्ट, देख कर राजा को आते रानी फूली ना समाई, राजा आ गया तो रानी को बहुत खुशी हुई, राजमहल के द्वार पर झटपट दौड़ी दौड़ी आई, राजा आया राजा आया, बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार। ओम शांति।
राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई, राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।